मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 16 सितंबर 2019 है और आज के इस afeis.com के लाइव मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और सच पूछिए तो हृदय से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस लाइव मैनेजमेंट में मैं सिकंदर ऑफ लाइफ यानी कि जो जिंदगी के सिकंदर होते हैं उनके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा और मैं आज अपनी यह बात एक शख्स के माध्यम से ही आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ। पिछले साल एक फिल्म आई थी 102 नॉट आउट, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये फिल्म जरूर देखी होगी और मेरी पत्नी और मैंने जब ये फिल्म देखी तो हम सब इतने ज़्यादा इससे प्रभावित हुए कि मैंने अपने लाइफ मैनेजमेंट में खासकर जो 60 वर्ष से अधिक की उम्र के दौर में एंटर कर गए हैं उनसे अनुरोध किया था कि वो इस फिल्म को जरूर देखें। दोस्तों, 102 नॉट आउट यानी कि एक ऐसा शख्स जो जिंदगी के 102 साल पूरे कर चुका है लेकिन अभी भी वह जिंदगी के मैदान में डटा हुआ है, बना हुआ है। अमिताभ बच्चन ने इसमें बहुत ही खूबसूरत रोल किया है जो इसके नायक हैं और उनका बेटा है ऋषि कपूर जो है तो 60-65 साल का लेकिन हमेशा मिमियाता रहता है, फालतू की चीज़ों में परेशान रहता है, उसको अपनी ज़िंदगी फालतू लगती रहती है और फिर अमिताभ बच्चन ने किस तरीके से उसे 102 नॉट आउट रहने का मंत्र दिया, तरीका सिखाया। तो दोस्तों, जो इस तरीके को सीख लेते हैं, जो इस मंत्र को जान लेते हैं, उनके लिए फिर सेंचुरी बनाना मुश्किल काम नहीं रह जाता और सब उससे भी बड़ी बात यह है कि वो सेंचुरी बड़े हंसी खुशी के साथ बनाते हैं और बिना किसी की मदद लिए बनाते हैं। तो आज मैं आप सबसे एक ऐसे ही शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। इन्होंने सेंचुरी तो नहीं बनाई है, सेंचुरी बनाने में अभी 15 साल की देरी है लेकिन हम सब उम्मीद करते हैं कि वे सेंचुरी बनाएंगे। दोस्तों, इस शख्स के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूं, आप मत समझिए कि मैंने कहीं से कुछ बातें सुन ली हैं या किसी किताब में कोई बात पढ़ ली है, नॉट एट ऑल। सच पूछिए तो ये वे शख्स हैं जिन्हें मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, पिछले लगभग 34-35 सालों से जानता हूं और केवल जानता ही नहीं हूं बल्कि जिन्हें मैंने बहुत गहराई से महसूस किया है। बाई प्रोफेशन तो वे प्रोफेसर रहे और चूंकि वो हिंदी लिटरेचर के प्रोफेसर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर साहित्य उनके रोम रोम में रच बस गया है। और कल्पना करके देखिए कि यदि ये व्यक्ति लखनऊ से हों तब तो आप यूं कह लीजिए कि शेर व शायरी और जो तहजीब हैं और जिंदगी जीने का जो एक अंदाज होता है वो सब तो बिल्कुल अलग ही होता होगा और वह सब इनके साथ है। और चूंकि ये साहित्य से जुड़े हुए हैं तो इनसे कभी जब मुझे भक्ति काल पर सूर तुलसी मीरा इन सब पर सुनने को मिलता था, जिस तरीके से वे डूब कर, यहाँ मैं स्पेशली अंडरलाइन करना चाहूँगा, डूब कर जब इनके पदों की व्याख्या करते थे तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खुद ही सूर तुलसी मीरा या कबीर बन गए हों, यानी कि डूबने की आदत। तो दोस्तों, ये जो सिकंदर हैं इनकी जो सबसे पहली विशेषता है वह है डूब जाने की, यानी कि जो भी काम कर रहे हैं उसमें डूब जाना, ऐसे कामों में भी डूब जाना, सच पूछिए कि जिनसे न तो इनको कोई आर्थिक लाभ हो मिलना है और न ही कोई प्रतिष्ठा मिलनी है लेकिन वो डूबे हुए हैं। जब भी अपने घर में हैं, गमलों को ठीक कर रहे हैं, सफाई में लगे हुए हैं, मना करने के बाद भी लगे हुए हैं क्योंकि अभी जबकि ये बीमार है तो इनकी बीमारी का जो सबसे बड़ा कारण जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है वो ये कि ये अभी काम करने की स्थिति में खुद को नहीं पा रहे हैं, मतलब शारीरिक रूप से कमजोर हो गए हैं और इन्हें काम करने से रोका जा रहा है, यानी कि इनकी बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो जब ये काम करते हैं तो उस काम में डूब जाते हैं और वहां कहीं किसी तरह का कोई लाभ दिखाई नहीं देता। दोस्तों, कुछ दिनों पहले इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई तो इनको जो छत्तीसगढ़ में रायगढ़ शहर है वहां से फिर दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली में अस्पताल में एडमिट किया गया। अस्पताल में इनके साथ अपने इनकी जो देख रेख करने वाले जो नाती जी हैं वो इनके साथ रहे। उस समय भी इनकी जो जिजीविषा थी, जो सिकंदर पना था जिंदगी के प्रति, वो देखने लायक था। अब चूंकि नाती साथ में रह रहा है तो स्वाभाविक तौर पर वो नाना जी कहेगा, और कुछ ही दिनों में, ज्यादा समय तक तो अस्पताल में ईश्वर की कृपा से उन्हें नहीं रहना पड़ा, 6-7 दिन ही रहे होंगे, पता लगा कि वो सबके नाना बन गए थे, नर्सों के नाना, डॉक्टर्स के नाना, दूसरों के नाना, सबके नाना। आपको क्या लगता है कि इतना आसान है किसी भी व्यक्ति से इस तरह से संबंध जोड़ लेना? एक वाकया है कि उनको उनकी देखरेख करने के लिए बीच बीच में एक लड़का सा नौजवान आता था, तो उस नौजवान को देखने के बाद उन्होंने कहा कि तुम केरल से हो, लगता है कि तुम केरल से हो। उसने कहा कि आपको कैसे पता लगा कि मैं केरल से हूं? तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे जो बाल हैं वो काले हैं, और इतने काले और घने बाल केवल केरल के लोगों के ही होते हैं। वो व्यक्ति ने जैसे ही यह सुना वह इनका मुरीद हो गया। देखिए, यह घटना बहुत छोटी सी लग रही है, लेकिन होता क्या है कि आप कैसे अपने को किसी से कनेक्ट कर लेते हैं, कैसे दूसरा व्यक्ति ये समझने लगता है कि ये मेरे लिए अनजान होने के बावजूद, पहली बार मिलने के बावजूद, मेरे लिए कोई फायदा न पहुंचाने वाला होने के बावजूद, कैसे मेरा इतना अपना है, कैसे मेरे वह इतना करीब है। और जिस दिन अस्पताल से उनको छुट्टी मिल रही थी तो उस दिन वो हाथ जोड़कर जिस तरीके से सभी का निवेदन कर रहे थे, सभी को नमस्कार कर रहे थे, तो दिखाई दे रहा था कि जो दूसरे पेशेंट हैं और जो दूसरे लोग हैं उनकी आंखों में नमी उतर आई थी, बरसात का जल कहीं ना कहीं छलछला आया था, उसमें खुशी के भी आंसू रहे होंगे कि चलिए अब ये अस्पताल से स्वस्थ होकर जा रहे हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि कहीं ना कहीं बिछड़ने का दर्द भी रहा होगा, क्योंकि ये अपनी बातों से, अपनी एक्टिविटीज से उस पूरे के पूरे माहौल को इतना जीवंत बनाए रखते थे कि सच पूछे तो जो दूसरे पेशेंट हैं वो भी शायद कुछ समय के लिए भूल जाते हों कि उन्हें कोई बीमारी हो। एक मैं और छोटी सी घटना बता रहा हूं, जब वो गुड़गांव में अपनी जो छोटी बिटिया है उनके यहां आ गए तो अब शारीरिक रूप से थोड़े कमजोर हो गए हैं, और बीमारी के बाद ऐसी कमजोरी स्वाभाविक भी होती है, तो एक दिन चलते चलते थोड़े से लड़खड़ा गए। थोड़े से जैसे ही लड़खड़ाए तो उन्होंने दीवार का सहारा ले लिया, और जब दीवार का सहारा लिया और जैसे ही थोड़ी देर में संभले तो उन्होंने अपनी छोटी बिटिया से कहा कि लगता है कि तुम्हारे घर की ये दीवारें बड़ी मजबूत हैं, मतलब मेरे बोझ को संभाल लिया, यानी कि मेरे से ज्यादा ताकतवर है। आप सोच करके देखिए कि उनके अंदर अभी भी, जो शारीरिक रूप से इतने कमजोर हो चुके हैं, मानसिक रूप से कितनी अधिक ताकत और ऊर्जा भरी हुई है। मित्रों, अभी बहुत थोड़ा सा वो भोजन करते हैं। एक दिन जब मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन करा रहा था तो उस प्लेट में मुश्किल से 2-3 कौर चावल के रहे होंगे, थोड़ी सी गिलकी की सब्जी और करेले का 2-3 छोटा खरे और करेले के 2-3 छोटे छोटे टुकड़े, और मैं जब उन्हें अपने हाथ से चम्मच से भोजन खिला रहा था तो मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। लेकिन चलिए, वो तो मेरी अपनी तकलीफ है, लेकिन यह जो महत्वपूर्ण बात यह है वो ये कि अभी भी, चाहे वो सुबह का भोजन हो, दोपहर का, चाहे वो सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का भोजन हो या रात का भोजन हो, खाते वो इतना सा ही है, लेकिन बकायदे उनके इंस्ट्रक्शन होते हैं कि करेले की सब्जी में बकायदे प्याज डाला जाए, इसमें ये मसाला डाला जाए, इस तरीके से खाना बनाया जाए, इसमें ये इतना रस होना चाहिए, बकायदे इंस्ट्रक्शन देते हैं। देखिए, जब हम ऊपरी तौर पर ये सब बातें सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार क्या, देखिए इतनी उम्र हो गई है, तबीयत ठीक नहीं है, और खाने के प्रति इतनी ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं, ये तो हमें मन मन थोड़ा सा लगने लगता है कि ये क्या है। लेकिन सच ये है दोस्तों, यही तो जिंदगी है। वो देखिए कि बहुत छोटा सा, थोड़ा सा ही हिस्सा खाएंगे, लेकिन पूरी तरह से डूब के, उसे भी पूरी तरह से डूब के खाना चाह रहे हैं, उसका पूरी तरह से रसास्वादन करना चाह रहे हैं। और उनकी जो 2 बेटी फिलहाल उनके पास हैं, मैंने देखा है कि वो उनके इस फरमान के आधार पर चाहे नाश्ता हो या भोजन इस तरीके से बनाती हैं, इतने मनोभाव से बनाती हैं, मानो कि वो भोग बना रही हूं। और फिर उनकी जो पत्नी है वो उन्हें इस तरीके से खिलाती हैं मानो कि वो भोग लगा रही हो। तो दोस्तों, ये जो जिंदगी का जो फलसफा है, जिंदगी को जीने की जो इच्छा शक्ति है, वही सब कुछ है, वही इसके केंद्र में होती है। जो क्षण हैं, जो पल हैं, जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में आप कैसे बेहतर निकाल करके उन क्षणों को अपना बना सकते हैं, उन क्षणों में कितना डूब सकते हैं, और डूब कर कितने उसमें गोते लगा करके और फिर से अपनी मुंडी को झाड़ते हुए बाहर निकल करके दृश्य का आनंद ले सकते हैं। यही जिंदगी का मूल रहस्य है और मुझे लगता है कि आनंद की यही भावना हमें 102 नॉट आउट तक पहुंचा देती है और ऐसे ही लोग जिंदगी के सिकंदर बन पाते हैं। तो दोस्तों, आपने रण क्षेत्र के सिकंदर के नाम को तो जाना है, सुना है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए, जो हम आम नागरिक हैं, उन सब के लिए जिंदगी के जो सिकंदर हैं ये ज्यादा काम के हैं। तो मैं अपनी ओर से जीवन के इस सिकंदर के शख्स को प्रणाम करता हूं और अंत में हो सकता है कि आपकी जिज्ञासा हो रही हो कि ये शख्स कौन है, तो मैं बता दूं कि इन शख्स का नाम है प्रोफेसर G.C. अग्रवाल। और शायद आपकी यह भी जिज्ञासा हो रही हो कि मेरा उनसे क्या संबंध है, तो ये भी मैं चलिए आपको अंत में बता देता हूं कि इनसे मेरी जब मुलाकात हुई थी तो एक प्रोफेसर के रूप में हुई थी। बाद में ये मेरे ससुर बने और बहुत ही जल्दी उस ससुर के सामने एक शब्द जुड़ गया, पितृ तुल्य। इनफैक्ट ये मेरे पिता ही हैं, पिता जैसे ही हैं। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी और ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।